ونصلي إلى رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دو سوالات کسی صاحب نے مجھے بھیجوائے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا مرشد دلوں کے حال جان سکتا ہے؟ صاحب، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دلوں کے حال صرف اللہ بہتر جانتا ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے اتنا علم عطا فرما دیتا ہے. کوئی شخص کا کسی بھی بلند مقام پر کیوں نہ ہو، کتنی ہی اعلی روحانی مرتبہ پر فائز کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کے دلوں کے حال نہیں دیکھ سکتا تا وقت کہ رب تعالی اسے نہ دکھانا چاہے. اور اس میں بھی ایک لمٹ ہے کہ جس حد تک اللہ کسی کے دلوں کا حال اس پر کھولنا چاہے وہ کھول دے، اور جب کھولنا چاہے اسے کھول دے. لیکن یہ کیفیت اس پر ہمیشہ طاری نہیں رہ سکتی کہ اس کے سامنے آنے والے ہر آدمی کا دل کا حال اس پر افشا ہو جائے. اللہ تعالی ستار ہے، وہ جہاں لوگوں کے عیب چھپاتا ہے وہاں لوگوں کی سوچوں کو بھی ہم سے محفوظ رکھتا ہے. ہم نے کیا کھایا اور کیا پی لیا اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے کہ ہم کسی کے معدے کے احوال نہیں جان سکتے کہ اس نے کیا کھایا تھا. میرے نزدیک تو مرشد اپنے مرید کے دلوں کے احوال سے واقف نہیں ہوتا ہمیشہ. کبھی کبھار ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب رب تعالی اس پر کسی کے دل کا حال وا کر دے. اسی ضمن میں مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ لوگ مرشد سے کچھ دینے کی بات کرتے ہیں، یا مرشد کہتا ہے میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا فلاں چیز دے دوں گا. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کسی کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالے گا کہ میرے فلاں بندے کو کچھ دے دو تو وہ دے دے گا. ورنہ کون اپنے پاس آئی ہوئی چیز سے جدا ہوتا ہے؟ یہ صرف رب ہے جو دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کہ میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، وہ غلط ہے. دے تو وہ سکتا ہے جو خود مالک ہو کسی چیز کا. ہم تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں، حتیٰ کہ خود اپنی جان کے ہم مالک نہیں ہیں، اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں. یہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. وہ جب چاہے ہمیں یہ چیزیں ہم سے واپس لے لے. کیا کوئی جان دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو اس لیے مرشد کو میرے خیال میں، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ایک انسان کے ہی درجے پر دیکھیے، اس کو اسی مقام پر رکھیے تاکہ اسی مقام سے آپ اسے پرکھیں. کیونکہ مرشد آپ کا صاحب علم تو ہے، صاحب کشف و کرامات بھی ہو سکتا ہے، مستجاب الدعوات بھی ہو سکتا ہے، صاحب امر بھی ہو سکتا ہے، لیکن رہے گا وہ بہرحال انسان. اور جب تک کوئی شخص انسان ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، اس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے. اسی لیے یہاں گفتگو کے دوران کسی موقع پر میں نے یہ ضرور عرض کیا تھا آپ سے، جب شاید مرشد اور مرید کے تعلق کا ذکر ہو رہا تھا یہاں جن نشستوں میں، تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اپنے مرشد کو آپ ہمیشہ ایک انسان جانیے، تاکہ اس سے ہونے والی کسی کوتاہی، کسی گناہ، کسی غلطی پر مرید کے دل میں اس کی طرف سے کچھ کھوٹ نہ آ جائے. दिल पर ही ना हो जाए मुरीद का। जब तक हम अपने मुर्शिद को इंसान जानते रहेंगे, इंसान समझते रहेंगे, तो उससे हम गलती की तवक्को रखेंगे, उससे कोताही की तवक्को भी रखेंगे, उससे गुनाह की तवक्को भी रखेंगे। तो अगर कभी किसी मौके पर ऐसा हो जाए तो हमारे दिलों में अपने मुर्शिद के बारे में किसी किस्म की कोई मैल नहीं आएगी, उसकी कदर व कीमत, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। ये एक एहतियात रखिए, अगर मुर्शिद से कुछ लेना है तो, अगर उससे इल्म सीखना चाहते हैं तो फिर मुर्शिद को उससे मोहब्बत कीजिए, उससे प्यार ज़रूर कीजिए, लेकिन उसे एक आम इंसान के लेवल पर ही रखिए, ताकि उसकी किसी गलती पर आपका दिल उससे फिर ना जाए। दूसरा सवाल किसी साहब ने खुद मेरी जात के बारे में किया है, और अच्छा है कि ये मेरी एक कोताही की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं उन साहब का, जिन्होंने भी ये सवाल भेजा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी एक गलती का एहसास दिलाया है मुझे। सवाल ये है कि आप इतने करीब आकर दूर चले जाते हैं, ऐसा क्यों महसूस होता है? मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, ये बात कह के जो मैं अर्ज करने लगा हूं, इसका ताल्लुक मेरी जात से कतई तौर पर नहीं है, ये इल्म की बात कर रहा हूं मैं, वरना मैंने तो पहले ही अपनी गलती को तस्लीम किया और मैंने उन साहब का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने मेरी इस कोताही की तरफ इशारा किया है। लेकिन इल्म की रूह से इसकी वजाहत मैं करना चाहता हूं, इस सवाल की, अपनी जात की नहीं। उसके कई मजाज होते हैं, फकीर कई मजाज के होते हैं। कुछ फकीर मजलसी होते हैं, वो पसंद करते हैं कि उनके इर्द गिर्द खल्के खुदा जमा रहे, नॉट दैट के उससे उनकी अना को तस्कीन मिलती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन मजलसी हैं, उनको लोगों में घुल मिल के बैठना, कसीर तादाद में मखलूक के साथ घुलना मिलना पसंद होता है, एक मजाज है अपना। तो उनके डेरे पर, उनके मकाम पर, उनके हुजरे में, उनके इर्द गिर्द खल्के खुदा का मजमा रहता है। आगे वजाहत करने से पहले एक अर्ज कर दूं कि फकीर का मजाज जो कुछ उसकी जिंदगी में होता है, उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी कब्र पर उसी मजाज की झलक मिलेगी कि ऐसे फकीर जो जिंदगी में मजलसी हैं और खल्के खुदा उनके इर्द गिर्द जमा रहती है, ऐसे औलिया कराम के मजारों पर भी खल्के खुदा का हजूम रहता है। ये बड़े सखी और दयालु और ठंडे दिलो दिमाग के फकीर होते हैं, खल्के खुदा के लिए बड़े मेहरबान होते हैं, खल्के खुदा की तमाम अटकेलियां और उस अटकेलियों के नतीजे में सरजद होने वाली तमाम चीजों को वो खंदा परेशानी से बर्दाश्त करते चले जाते हैं। इसी तरह फकीरों की एक किस्म वो होती है कि जब उनका मूड होगा तो उनके इर्द गिर्द खल्के खुदा का हजूम होगा और मखलूक के दरमियान बैठ के खुश हो रहे होंगे, सडनली मजाज में तब्दीली आई तो तन्हाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर मखलूक पर गरजने बरसने लगते हैं, उन्हें दौड़ा देते हैं अपने पास। तो ऐसे लोगों के दुनिया से चले जाने के बाद इनके मजारों पर भी यही कैफियत होती है, एक मखसूस वक्त में वहां देखेंगे बहुत रश है, सडनली वहां बंदा ही कोई नहीं होगा, चले जाएंगे लोग। फिर एक किस्म फकीर की वो होती है कि वो बड़े चूजी होते हैं, वो आदम बेजार तो नहीं होते लेकिन गिने चुने लोगों से, अपनी मर्जी के लोगों से वो मुलाकात रखते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, ना हर एक से वो घुले मिलेंगे, बस चंद एक लोग होंगे जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैं और उनके करीब रहते हैं। यही कैफियत ऐसे लोगों के मजार पे होती है, जैसे हजरत मियां मीर साहब हैं, हजरत पीर मक्की साहब हैं, शाह अबुल मुआली हैं। वो जो सबसे पहली किस्म मैंने बयान की थी, उनमें दाता साहब हैं, शाह जमाल साहब हैं। यहां देखिए कैसा हजूम रहता है हर वक्त। कुछ लोग हैं जो अगर कोई आ गया तो उससे बड़ी मोहब्बत से मिलेंगे, लेकिन उसे इस तरह से एंटरटेन नहीं करेंगे कि वो एनकरेज हो जाए कि ज्यादा देर बैठे उनके पास। मोहब्बत का इजहार करेंगे, अखलाक से मिलेंगे, लेकिन उसके बाद किसी न किसी तरीके से इसका इजहार कर देंगे कि अब तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, वक्त जाया ना करो। ऐसे लोगों में एक साहब तो मियानी साहब में दफन है, एक हमारे मुर्शद साहब में मेरे, उनका भी यही मजाज है, और मजार पे भी देख लीजिए कोई आदमी ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, वहां फातिहा पढ़ेगा और चला जाएगा। कुछ लोग खल्के खुदा को अपने करीब नहीं आने देते, नॉट दैट कि उनको मोहब्बत नहीं खल्के खुदा से। कोई ऐसा फकीर आपको नहीं मिलेगा जिसको मखलूक से प्यार ना हो, लेकिन ये मजाज की बात है, अपने करीब नहीं आने देते। तुर्की में जनाब शाह शम्स तबरेज साहब हैं, वहां लोग नहीं मिलेंगे आपको। कलियर शरीफ में जनाब सरकार सईद इलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब हैं, लोग नहीं मिलेंगे आपको। हजरत अबू अली कलंदर साहब हैं पानीपत में, सन्नाटा होगा। अब बदकिस्मती से जहां रूहानियत की बात आती है वहां मेरी मजबूरी भी ये हो जाती है कि जो आदमी मेरे पास आता है, ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि आप हर शख्स से इस तरह मिलिए कि आपके पास आने वाला हर आदमी ये समझे कि आप सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। उस सुन्नत पर अमल तो होना है, फकीर तो अमल करेगा। तो कुछ फकीर तो इस तरह के होते हैं कि जहां कोई बंदा आया, जो कुछ उन्होंने पेश करना है हदीयतन, आने वाले की खिदमत में उसकी तवक्को से ज्यादा हदिया पेश किया, और फिर उससे कहते हैं कि अब तुम जाओ। बस मकसद ये होता है कि इसको लौट के आने की मेरे पास जरूरत ही ना रहे, एक ही बार ये इतना ले जाए यहां से कि दोबारा लौट के ना आए मेरे पास। तो वहां लोगों को ये महसूस होता है कि शायद मैंने किसी को अपने बहुत करीब कर लिया, या मैं उसके बहुत करीब चला गया और फिर भाग गया। वो ऐसी कोताही है जो मजाज में दखल हो गई, अब मैं क्या करूं। बहुत कोशिश करता हूं, हालांकि अपनी जो दफ्तरी जिंदगी है उसमें ये सूरत हाल नहीं है, या जो मेरी जाती जिंदगी है उसमें सूरत हाल ये नहीं, लेकिन ये शायद जैसे मजाज रूहानियत में बिल्डअप होता है उन पढ़ाइयों के नतीजे में जो पढ़ाइयां इंसान पढ़ रहा होता है, तो ज्यादातर पढ़ाइयां मेरे पास जलाली हैं, जमाली पढ़ाई बहुत कम है। तो ये मुझसे कोताही होती है, लेकिन उसमें दखल मेरे मजाज को तो क्या होगा, या मेरे इरादे को तो दखल क्या होगा, वो एक अंदर से ही चीज पैदा होती है। एक सवाल किसी और साहब ने मुझसे लास्ट संडे दुआ के दौरान, वो साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने पूछा था नूर हक के बारे में। दरअसल नूर हक तो नाम से ही जाहिर है कि अल्लाह का नूर है। कुछ औलिया किराम के मुताबिक इसकी दो शक्लें हैं, ایک مکتبہ فکر کے فقیروں کے مطابق نور حق کی شکل لو کیسی ہے جو بتی موم بتی پر لو ہوتی ہے, اس کا جو شعلہ ہوتا ہے اس نور کی وہ شکل ہے. اور کچھ فقیروں کے مطابق اس نور کی شکل ایک لہر کیسی ہے. میرے نزدیک اس کی شکل لہر کیسی ہے, چونکہ اس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے تو انسانی علم اور انسانی عقل تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی, کہ رب سے متعلق رکھنے والی چیز ہے. تو ہر فقیر کی کیفیت وہی ہے جو اندھوں نے ہاتھی کو جو دیکھا تھا, جس نابینا کے ہاتھ میں ہاتھی کے جسم کا جو حصہ آیا اس نے ہاتھی کو ویسے ہی جانا. تو یہاں بھی فقیر تو رب تعالی کی بات جہاں آ جائے, بلکہ ہر انسان وہاں تو نابینا ہی ہوتا ہے, کیونکہ نہ اس کی عقل کی رسائی ہے وہاں تک اور نہ اس کے علم کی رسائی ہے وہاں تک. تو جتنا حصہ جس نے جس طرح دیکھ لیا اس نے یہی جانا کہ یہی کچھ تھا. تو جس نے نور حق کو جس شکل میں دیکھا, کسی نے لو کی شکل میں دیکھا تو اس کے نزدیک نور حق لو ہے, اور جس نے اس کو لہر کی شکل میں دیکھا وہ اسے لہر جانتا ہے. اس کی کیفیات بھی دو ہیں, اس کی زندگی باقیات میں ہے اور اس کی موت فنا میں ہے, اور فنا کو ابدیت حاصل ہے. جیسے جب تک انسان زندہ ہے نور حق اس میں سمایا ہے, اس کی زندگی سمانے میں ہے, اور اس کی فنا بمعنی منتقلی موت میں ہے. کہ نور حق انسان میں سمایا ہے جب تک وہ زندہ ہے, جہاں انسان کی موت واقع ہو گئی اس کی روح اس کے اندر سے نکل گئی, یہ نور پرواز کر گیا, وہاں سے چلا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم بالا میں چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے وہاں قائم ہو گیا. اس کو موت نہیں آئے گی, فنا نہیں ہوگا. تو یوں اس کی کیفیات دو ہی ہیں, اور دونوں صورتوں میں یہ زندہ ہی رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا کبھی, کیونکہ اللہ کو زوال نہیں ہے, اللہ لا زوال ہے. تو یہ نور نور حق ہے, اللہ کا نور ہے, اس لیے یہ بھی لا زوال ہے. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
شاہب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سے رابطہ گزشتہ 21 یا 22 سال سے ہے
جناب,
لیکن جو آپ کے بارے میں میرا حسن ظن تھا وہ آج آپ نے کلیریفائی کر دیا. یعنی اتنے قریبی تعلق کے باوجود میں ہمیشہ آپ کے جلال سے خوف زدہ رہا, اور کبھی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں تنہائی میں آپ سے کسی دعائیہ کلمات کے بارے میں آپ سے بات کروں. اکثر میرے گھر میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے, میرے روابط ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ان کے جلال سے خوف زدہ رہتا ہوں, اس وجہ سے میں ان کے سامنے کلیریفائی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. تو آج وہ حسن ظن جو نا حقیقت میں بدل گیا ہے. شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے کافی حد تک اس میں میری تصدیق فرما دی. اور یہاں جب میں آیا تھا تو میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا کہ میں شاہ صاحب سے کیا سوال پوچھوں گا, لیکن جیسے ہی بیٹھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا میں شاہ صاحب سے آج علم غیب کے بارے میں پوچھوں, اور وہ اتفاق سے آپ نے اس کو جو ٹاپک ہے علم غیب سے ہی شروع کیا. اور بنیادی چیز ہے کہ ایمان کی جو بنیادی چیز ہے وہ غیب کا غیب پر ایمان ہے. یہ سب سے ایک بنیادی ہے, اصول ہے قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ میں دیا ہوا ہے. لیکن غیب کا جو ایکسٹینٹ ہے وہ کہاں تک ہے, और यह है कि गैप में कौन कौन शामिल हैं, और इसके अलावा जो है आदमी उस गैप पर कहाँ तक कार्बन रह सकता है। जैसे अभी अभी आपने फरमाया है कि गैप कुछ हद तक कुछ लोगों को दिया जाता है और वो भी उसके एक हद तक, तो इसमें अंबिया औलिया औफिया कहाँ तक शामिल हैं, उनको गैप का इलम कहाँ तक होता है, और वो क्या उस गैप के इलम पर कारबंद रहते हैं, और क्या हमारे लिए जरूरी है कि उनके इस गैप के इलम पर भी हम ईमान रखें, एक बार यह है। दूसरी बार यह कि साहिबुल अमर कौन है, मौजूदा ज़माने में साहिबुल अमर कौन है, यह है ये सवाल था। और तीसरा यह है कि दरवेश जो है, फकीर जो है, जिंदगी में तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे तलवार म्यान के अंदर हो, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि दो धारी तलवार म्यान से बाहर हो। तो इन सवाल का जवाब सही होगा आपसे, शुक्रिया।
जलाल उन लोगों को आता है, गुस्सा उन लोगों को आता है जो ताकतवर होते हैं। ये जब मैं इस कमरे में दाखिल हो रहा था तो कमरे के बाहर किसी ने मुझसे कहा कि मैं इस तरह यूं नहीं करते कि आपको गुस्सा आएगा, तो मैंने उन्हें एक जवाब दिया था कि साहब अगर पाकिस्तान अमेरिका पर गुस्सा करेगा तो क्या बिगाड़ लेगा अमेरिका का, तो मैं अगर आप पे गुस्सा करूंगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मैं क्या बिगाड़ सकता हूं। तो फकीर तो बेचारा बहुत कमजोर इंसान होता है, तो उसको क्या गुस्सा आएगा और क्या जलाल आएगा। तो इसीलिए तो मुहावरा वजूद में आया था कि कहर दरवेश बरजाने दरवेश, फकीर का गुस्सा तो उसकी अपनी जात ही पर उतरता है। तो इसलिए वो दिल से ना मुझे गुस्सा आता है ना मुझे मेरे अंदर जलाल है। वो और बात है कि अल्लाह ने शक्ल कुछ ऐसी अता फरमा दी, लगता है कि हर वक्त गुस्से में ही फिर रहा होता हूं। जहां तक इल्मे गैब की बात है, यहां उस पर बहुत तफसील से बात हुई थी और मुख्तसरन मैं एक या ज़िमनन उसका इयादा कर देता हूं कि रूहानी अलूम या अलूम बातनी जिनको हम कहते हैं वो 118 किस्म के हैं। उनमें से चार अल्लाह ने अपने पास मखसूस रखे और इल्म गैब भी वे उन्हीं में से है। वो असल में दर हकीकत चारों ही इल्म गैब हैं और वो चारों किस्में हैं इल्म गैब की, इस वजह से उन्हें चार उलूम कहा जाता। एक ही दरिया से निकलने वाली चार नहरें हैं वो। मिसाल के तौर पे इल्मुल गैब अलका है, इल्मुल गैब इल्हामी है, इल्मुल गैब इम्तनाई है और इल्मुल गैब अताई है। अब जो इल्हाम अलका और अता है इसका नहायत तफसील से यहां किसी गुज़श्ता गुफ्तगू के दौरान जिक्र हुआ। चूंकि ये अल्लाह ने चारों इल्म अपने लिए मखसूस रखे, लेकिन ये वो अलूम हैं जो वो इंसानों पर वाह कर देता है। तो जिस शख्स से वो जितना राजी हुआ, जिस शख्स को उसने अपने जितना करीब कर लिया, जिस शख्स पर वो जितना मेहरबान हो गया, उसी कदर उसने ये इल्म उन पर जाहिर कर दिया। अब किस जरिए से किया, वो चारों जरा ये हैं जो मैंने अर्ज कर दिया आपसे। तो इन चार जरियों के जरिए से, चूंकि ये इल्म उस पर जाहिर होता है इन चार जराए से, इसलिए इसको चार इकसाम का नाम दे दिया गया। इसलिए मैंने ये अर्ज किया था कि एक ही दरिया से निकलने वाली चार नहरें हैं। किसी नहर से आपको पानी खेतों को सैराब करने के लिए दे दिया जाए, पानी वही होगा, उसका केमिकल कंपोजिशन वही होगी, कंटेमिनेशन अगर उस पानी में है तो वही होगी, रंग वही होगा। फर्क यह है कि किस नहर से आपको दिया गया। तो نام اس نہر کا آ جائے گا، در حقیقت پانی اسی دریا کا ہے، قسم وہی ہے، اثرات وہی رکھے گا وہ جو کسی اور نہر سے ملنے والا پانی ہے، منبع ایک جو ہوا. تو صرف جس ذریعے سے علم غیب کسی شخص پر واقع کیا گیا، اسی نسبت سے اس کو قسم کا نام دے دیا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ کتنا اپنے قریب کرتا ہے، کتنا اسے عزیز رکھتا ہے، کتنا اس پر مہربان ہو گیا ہے، اسی قدر اس کو یہ علم عطا فرما دے گا. اور بات میں پھر ریپیٹ کر دوں گا جو گزشتہ اتوار بھی عرض کی تھی اور اس سے پہلے بھی کئی بار کہی، کہ جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو علم ہی کیوں عطا کرتا ہے. عرض یہ ہے کہ جس کو انسان بھی، جس کی سوچ بھی محدود، جس کی عقل بھی محدود، جس کا علم بھی محدود، جس کی محبت کی حد بھی محدود، وہ بھی کسی کو اگر اپنے قریب رکھتا ہے، اس کو عزیز سمجھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کو وہ چیز دینا پسند کرتا ہے، وہ تحفہ دینا پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب میں اچھا ہو. تو اللہ چونکہ علم کو بہت عزیز رکھتا ہے، اسے علم بہت پسند ہے، تو جس سے بھی وہ راضی ہوگا اسے علم ہی عطا کرے گا، اور علم سے وزڈم پیدا ہوتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. تو رب تعالی خود شناسی سے، حق شناسی کی طرف لے جائے گا اسے علم کے ذریعے سے. اس لیے جس سے بھی رب راضی ہوگا اسے علم عطا فرما دے گا. یہ جو پہلے سوال کے ضمن میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ مرشد دلوں کے حال جان سکتا ہے، تو اس پر میں نے سوال کرتے ہوئے دینے کی بات کی تھی. تو کسی مرشد نے اپنے مرید سے یہ کہا تھا کہ جب تک کوئی بندہ رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھائے تو رب بھی اسے کچھ نہیں دیتا، تو جب تک تم مجھ سے مانگو گے نہیں میں کیسے تم کو دوں گا. میں نے فوراً یہ عرض کی تھی کہ یہ شرک ہے یہ الفاظ عطا کرنا، دو لحاظ سے. میرے نزدیک قطعی طور پر غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھائے اور مانگے نہ تو اللہ نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں نے جیسا اپنے رب کو پایا ہے، میں نے تو اپنے رب کو ایسا دیالو پایا، اتنا سخی پایا کہ جو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا، بن مانگے دیتا ہے، اور اس کی عطا بے پناہ ہے، وہ جاری رہتی ہے. تو یہ کہنا رب کے بارے میں کہ جب تک اس سے ہاتھ اٹھا کے مانگا نہ جائے وہ عطا نہیں کرتا، میرے نزدیک گستاخی ہے. وہ تو ہر لمحے عطا کرتا رہتا ہے، اس کی عطا ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ باہر، گھر کے باہر ہونے والی بارش میں اگر بھیگنا چاہیں تو ہم گھر سے باہر کب نکلیں گے؟ بارش نہیں رکے گی، اس کی رحمتوں کی، اس کی عطا کی بارش ہوتی رہتی ہے. ہم کب اس میں سے کچھ لے سکتے ہیں؟ یہ ہماری ہمت ہے، یہ ہم پر منحصر ہے. تو یہ غلط ہے یہ کہنا رب کے بارے میں. اور یہ کہنا کہ جب تک مجھ سے تم کچھ نہیں مانگو گے میں کیسے دوں گا، میرے نزدیک یہ بھی غلط ہے. مرشد تو بہت بلند مقام پر ہے، دوستی میں اچھا معیار دوستی کا یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو منہ کھولنے کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے، अपने दोस्तों पर नजर रखी जाए कि हम हमारा कौन दोस्त इस वक्त ऐसी कैफियत में है कि उसको उसकी मदद को पहुंचा जाए, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा जाए। तो ये इंतजार ना किया जाए कि दोस्त कब मदद मांगेगा, अस खुद जाके उसकी खिदमत कर दी जाए, और वो भी इस कदर आजिजी के साथ कि उसको ये एहतमाल होने लगे कि शायद इसने मुझसे कभी कर्ज लिया था, जो ये लौटाने आया है और वो कर्ज दिया हुआ मुझे याद नहीं है। इतनी आजिजी के साथ अपने दोस्त की खिदमत कर दी जाए। अगर दोस्ती के अंदर ये मयार है तो मुर्शिद और मुरीद का रिश्ता तो इससे कहीं बुलंद है। अगर मुर्शिद दुनियावी तौर पर इस पोजीशन में है कि अपने पास किसी अकीदतमंद आने वाले अकीदतमंद की दुनियावी वसाइल के हवाले से मदद कर सके, तो मुर्शिद का मकाम तो ये तकाजा करता है कि उस अकीदतमंद को कभी इशारतन भी वादा न करना पड़े, बल्कि खामोशी से उसकी मदद हो जाए, और ऐसे तरीके से मदद हो जाए कि किसी और के कानो कान खबर ना हो, बल्कि खुद उस अकीदतमंद को खबर ना हो कि मेरी मदद कर दी गई। लेकिन एक दरख्वास्त मैं करूंगा कि किसी आइंदा इतवार को कोई ये सवाल ना मेरे पास भेज दे कि शाह साहब कभी अपने गरेबान में मुंह डाल लीजिए, आपने कभी किसी की कोई खिदमत की। तो भाई मैं तो लास्ट संडे भी कह रहा था कि अब एहसास होने लगा दुनिया का सबसे कंजूस शख्स मैं हूं, तो बतेरी कोशिश करता हूं कि हौसला पैदा कर लूं कि किसी को एक गिलास पानी ही पिला सकूं। तो वो भी हौसला नहीं पैदा होता कि उम्र गुजर गई, अब यह आदत क्या खाक जाएगी। लेकिन आप लोगों से मैं वो ये जरूर अर्ज करूंगा, अगरचे खुद इस पे अमल नहीं कर पा रहा, लेकिन आपसे जरूर दरखास्त करूंगा कि आपके इमीडिएट इंडिपेंडेंट्स जो हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपकी बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, आपकी वालदैन जो आप पर डिपेंडेंट हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना अव्वलीन फर्ज है हम पर। तो उनकी जरूरत से ज्यादा उनको देने के बाद जो हमारे पास बच जाए, वो बड़े खुले हाथ से दूसरों की खिदमत में पेश कर दिया जाए, और कोशिश कीजिए कि इसमें अपने दुश्मन को तरजीह दे दें। जो जितना बदतरीन दुश्मन है आपका, उतनी ही फयाजी से और उतनी ही आजिजी से उसकी खिदमत कर दें जाके, ये अल्लाह को बहुत पसंद आएगी ये बात, और ये आपको अल्लाह के बहुत करीब ले जाएगी। क्योंकि जब हम किसी दुश्मन को इतनी मोहब्बत और खलूस और आजिजी के साथ कुछ पेश करते हैं, तो रब से राजी होता है कि इस शख्स के अंदर आजिजी है, कि ये समझ रहा है कि जो कुछ इसके पास है ये दर हकीकत इसका नहीं है, ये मेरा ही अता करता है, और देते वक्त ये मेरी सुन्नत पर अमल कर रहा है कि ये नहीं देख रहा है दुश्मन कौन और दोस्त कौन, बल्कि दुश्मन को पहले दे रहा है। ये याद रखिए कि उसकी शान रबूबियत भी यही है कि वो नेक लोगों की दुआ तो शायद सुनते सुनते कुछ वक्त ले ले, लेकिन ऐसे लोग जो उसे मानते ही नहीं या उसके साथ शरीक ठहराते हैं या मुआज अल्लाह उसको अच्छे लफ्जों में नहीं पुकारते, उनकी दुआएं तो फौरी तौर पे सुन लेता है। ये उसकी शान रबूबियत है, तो ये उसकी सुन्नत पर अमल होगा, रब की सुन्नत पर अमल होगा, और अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद आएगी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मेरा सवाल अंग्रेजी में है. आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट एन आयत ऑफ कुरान दैट सेज वमा कद्रुल्लाह हक्का कद्रही. प्लीज एक्सपाउंड इन कंजक्शन विद स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पीपल बिलीवर्स इन जनरल इन द लाइट ऑफ योर गॉड गिफ्टेड विजडम.
ये कुछ संडेज पहले मैंने एक गुजारिश की थी कि कुरानी आयात की तशरी मैं अवॉइड करता हूं करता हुआ क्योंकि जैसे मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि कुरान की दो तरतीब हैं, एक तरतीब नजूली है और एक तरतीब किताबी है. तरतीब नजूली तो उसको कहते हैं जिस तरतीब में वही नाजिल होती रही या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान आयात लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते रहे. और तरतीब किताबी वो है जिसमें हमें कुरान पाक हम तक पहुंचा छपने के बाद. इसीलिए अगर हम देखें तो कुछ मदनी सूरतें पहले हैं और मक्की सूरतें बाद में आई हैं जो कुरान हमारे सामने है इसमें, जबकि ऐसा नहीं है उसकी तरतीब नजूली के मुताबिक. और इसी तरह जो वही आती रही वो उस मौके की मनासबत से आई जिस वक्त वो उतारी गई. वो मनासबत उस सूरत हाल की थी जिस सूरत हाल में सवाल कोई पूछा गया या कोई सूरत हाल पैदा हो गई तो उस पर वो आयत नाजिल हो गई. तो फिर वो आयत मजमूए की शक्ल इख्तियार कर गई तो उन्हें सूरतें कर दिया गया. और सूरतें जब कई एक हुई तो फिर वो पारे की सूरत में जमा कर दी गई और 30 पारों का एक कुरान बन गया. इसमें हो ये गया है कि कुरान पाक की कोई आयत एज सच अगर हम उठाएंगे तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी. उसकी तशरीह करना, उसको एक्सप्लेन करना अधूरा रह जाएगा और कई एक गलतफहमियों का सबब बन जाएगा या जहनों में कई एक सवाल उठाएंगे. तो किसी एक आयत की तशरीह करते वक्त उसके कॉन्टेक्स्ट में जितनी आयत कवर हो जाएंगी पिछली वो सब कोट होनी चाहिए और उनकी इसके साथ मिलाकर तशरीह की जाए तो सही वाजे होगी सूरत हाल. मैं बदकिस्मती से हाफ़िज़े कुरान नहीं हूं, मुझे हिफ्ज नहीं है, पढ़ा तो है कुरान लेकिन हाफ़िज़े कुरान नहीं, इसलिए मेरे लिए वो दुश्वार होगा कि मैं तमाम आयात एक ही वक्त में उठाकर मुख्तलिफ सूरतों से फिर उनको इकट्ठा करके उसकी तशरीह कर दूं. और ये गुनाह है कि कुरान की नामुकम्मल तशरीह कर दी जाए. मैं इसीलिए कुरानी आयात का हवाला देते हुए भी बचता हूं कि मैं न दूं हवाला, क्योंकि फिर मुझे दूसरी तमाम आयात के हवाले देने चाहिए, वो देने के काबिल नहीं मैं. ये मुझे इसमें कोई आर नहीं ये तस्लीम करने में कि मैं हाफिज नहीं हूं कुरान का. तो इस वजह से मैं तशरीह आम तौर पे नहीं करता. हाँ अलबत्ता इस पे मुझे काम मैं कर सकता हूँ कि अगर कोई एक टास्क मुझे कोई दे दे कोई इल्मी नुक्ता तो मैं शायद एक हफ्ते 10 दिन में तमाम सूरतें उससे मुतालिक जमा कर लूँ और फिर उसकी तशरीह कर दूँ. वो उसी सूरत में मुमकिन है लेकिन इस तरह से ऑफ हैंड मेरे लिए दुश्वार हो जाएगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूं. कुरान की तशरीह न कराइए मुझसे इस तरह से, पहले से नोटिस दे दीजिए, मैं कर दूंगा बाद में. ताकि मैं तमाम उसको दूसरी आयात के साथ उसके इन कंजक्शन में दजर आयात पढ़ के मैं आपको तशरीह कर दूं। फिर
वालेकुम जी।
वालेकुम
शाह साहब, मेरा नाम हुसनैन है। शाह साहब, फकीर के डेरे पर आना बायस बरकत होती है, लेकिन कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम नहीं होते, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे मैं कहां पर था जब आपके पास आया था, मैं कुछ भी नहीं था, और अब जब मैं यहां पर पहुंच जाऊं तो मैं बहुत कुछ बन गया हूं, वो भी सब आपकी दुआ है। और मैं जहां पर भी जाता हूं आपका नाम जरूर लेता हूं, लेकिन सारों के सामने नहीं कह सकता, लेकिन लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो कुछ इस तरह का साहब है कि मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, उनका काम कुछ भी नहीं हो पा रहा।
हसनैन साहब, ये आपकी मेहरबानी है कि आपने अपनी तमाम मेहनत का क्रेडिट मुझे दे दिया। मैं नहीं समझता कि मैंने कभी किसी शख्स को कोई सीधी राह दिखा दी हो, न मैं इस काबिल हूं, और इसलिए मैं हमेशा लोगों से माजरत कर लेता हूं और बड़े खुले लफ्जों में कहता हूं कि भाई मेरे पास आके आपको क्या मिलेगा। मैं तो आज तक अपने आप को ना ठीक कर सका, मैं अपने आप को सीधी राह न दिखा सका। तो जो आदमी अपने आप को ना सुधार सके वो किसी के लिए क्या करेगा। जो कुछ अगर आप में कोई तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ, तो ये तमाम तर आपकी मेहनत और आपकी कुर्बानियों के नतीजे में है, और इसका सारा क्रेडिट आपका है। तो ये उस शख्स का बड़ापन होता है कि अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानियों का क्रेडिट किसी दूसरे शख्स को इतने खुले दिल से दे दे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जो कुछ आप में बेहतरी की अगर सूरत पैदा हो गई है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। अब फकीर के डेरे पर आने की जो आपने बात फरमाई कि वो बाय से बरकत होता है, यकीनन अगर कोई सही फकीर है, कोई असली फकीर है, तो उसके पास जाकर बैठकर इंसान के अखलाक दुरुस्त होते हैं, उसके अमाल दुरुस्त होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि वहां इल्म की बात होती है। किसी भी फकीर के डेरे पर जाएं तो कभी ये तवक्को लेकर न जाएं कि आप कि दुनियावी मामला ठीक हो जाएंगे। अगर ये तवक्को लेकर उसके किसी फकीर के डेरे पर जाएंगे तो ये ऐसा ही है कि समुंदर से आप दोनों हाथों का एक चुल्लू बनाएं और उसमें पानी भरने की कोशिश करें। फकीर से कुछ लेना है तो फिर उससे इल्म हासिल कीजिए, ताकि उसके जरिए से इंसान की दुनियावी जिंदगी भी संवर जाए और आखिरत की जिंदगी भी संवर जाए। लेकिन शर्त यह है कि वो किसी असली फकीर का डेरा हो। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब फरमा दे। और आपने अपने वालिद साहब का हवाला दिया है, मुझे नहीं मालूम उनका क्या काम है, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि अपने वालिद साहब की खिदमत में जरूर हाजिर होइए, और जहाँ कहीं किसी दरवेश के पास जाते हैं उससे भी अल्लाह के हजूर दुआ कराइए कि वो अल्लाह के हजूर अर्ज करे कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की मुश्किलें आसान फरमा दे। आप खुद भी दुआ कीजिए अपने वालिद साहब के लिए कि अल्लाह आपके वालिद साहब को जिस मुश्किल में भी हैं उस मुश्किल से निकाल लें, और परवरदिगार आप पे करम फरमा दे और आपके वालिद साहब पे करम फरमा दे।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
शाह साहब, मैंने मेरा ये क्वेश्चन है कि कश्फ और मराकबा में क्या फ़र्क है, और साहिब कश्फ जो हैं ड्यूरिंग कश्फ उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं,
और एज फार एज द मराकबा इज कंसर्न, तो क्या हम जैसा गुनाहगार बंदा इसको कंडक्ट कर सकता है, या उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, स्पिरिचुअली पार होनी चाहिए या क्या है उसके लिए, या कुछ वज़ाइफ हैं, ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिए।
साहब, मराकबे में और कश्फ में इतना ही फर्क है जितना एक MBBS स्टूडेंट और एक MBBS डॉक्टर में है। कि जब कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है तो पढ़ रहा होता है और उसकी नजर होती है उस मंजिल पर जो MBBS हो जाने के बाद वो डॉक्टर कहलाएगा। तो मराकबा दर हकीकत MBBS के वो 5 साल हैं जब स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके और फाइनल ईयर क्वालिफाई करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद डॉक्टर बन जाता है। तो कैश डॉक्टरी की वो हालत है जब वो क्वालिफाइड हो चुका। तो ये मराकबा ही है जो आपको कश्फ के मकाम तक ले जाएगा। मराकबा दर हकीकत कंसंट्रेशन का नाम है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अपना जहनी और जिस्मानी रिश्ता दुनियावी मसरूफियात और दुनियावी आलाइशों से तोड़कर कुलियतन मुतवज्जो हो जाते हैं रब्बे करीम की तरफ, और हमारे जिस्म की तमाम कुव्वत सिमट कर उस वक्त हमारे जहन में जमा हो जाती है और जहन मरकूज होता है सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर, और वो नुक्ता है रब्बे करीम। तो जब कंसंट्रेशन की ये कैफियत पैदा हो जाती है तो हम उसे मराकबा कहते हैं। और यही मराकबा जब करते करते इंसान की एक प्रैक्टिस हो जाती है तो उस पर असरार खुलने लगते हैं। जिस्मानी लिहाज से कहीं एक इंच भी मूव किए बगैर वो अनजाने अनदेखे जहानों की सैर करने लगता है, तो वो हालत कश्फ कहलाती है। इसको आसान लफ्जों में हम यूं कह सकेंगे कि कश्फ इंसान का टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो जाने का नाम है, और मराकबा टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड हो जाने के कैपेबल होने तक की मेहनत का नाम है, यूं कह लीजिए। ये आसान अल्फाज हैं उसके। और जहां तक कैफियत की बात है तो वो तो साहब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। एक जमाने में मुझे जुनून सवार हो गया, यहां किसी मजार पे बाद में उन साहब के दस्ते मुबारक से मुझे तीसरी खिलाफत अता हुई। मैं उनके मजार पर जाके हर जुमेरात को एक खास टाइम में उनके सरहाने बैठ के रब ताला के कुछ नाम, 3 नाम थे जिसको मैं पढ़ता था। तो पहली जुमेरात तो खैरियत से गुजर गई, मैं आराम से बैठा था वहां पढ़कर मुकम्मल करके। वो तमाम वक्त एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त था। वो अगली जुमेरात बावजूद इसके कि मैं कोशिश करता रहा कि मैं हंसू नहीं, तो वो मैंने कह के ही तो अपने कंट्रोल कर लिए पढ़ाई के दौरान, लेकिन मुस्कुराहट में कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मुझे एहसास हो रहा था कि हर शख्स मुझे देख के हैरान हो रहा है कि ये शख्स पागल तो नहीं, पढ़ रहा है तस्बीह और बिला वजह में ऐसी ब्रॉड मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। तीसरी जुमेरात को मेरे अंदर वो कैफियत पैदा हो गई कि मुझे कह कहे रोकना मुश्किल हो गया। तो मेरा तमाम जिस्म हिल रहा था उन कहकहों की वजह से, अगरचे मैंने होंठ दोनों दांतों के नीचे लिए हुए थे कि आवाज ना निकलने पाए मेरी, लेकिन वो कहकहे रोकना बहुत दुश्वार हो रहा था। और चौथी जुमेरात को यह हाल हो गया कि मैं सिर्फ आधा घंटा बैठ सका और उसके बाद मेरे कहके बुलंद होने शुरू हो गए वहां मजार पे। तो लोग अपनी फातिहा खानी छोड़कर वह मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया कि ये पागल हो गया बंदा बैठा हुआ। तो उसी कहके लगाने की कैफियत में मैं बाहर भाग गया। तो इंतहाई बदतमीजी है जो हरकत हो रही थी मुझसे। तो वहां फिर मैं नहीं बैठा, लेकिन हुआ ये कि वो तीसरी या चौथी मर्तबा जो गया तो फिर उन साहब मजार से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मेरे सर पे दस्तार रख दी और फरमाया कि मुबारक हो तुमको सिलसिले कादरिया में खिलाफत मैंने अता कर दी। तो ये जो कैफियत है, ये मुझ जैसा नाअहल और बदतमीज शख्स अगर है तो ये हरकत भी कर गुजरेगा उस कैफियत में जो मैंने कर दी। लेकिन अगर आप जैसा नेक और अच्छा इंसान है तो उसे एब्जॉर्ब कर जाएगा हर चीज को, जाहिर ही नहीं होने देगा। तो मैन टू मैन वेरी कर जाएगी उसकी कैफियत, इसलिए उसको एक्सप्लेन करना खासा मुश्किल है कि उसके वो कैफियत क्या होगी मराकबे के दौरान और कैफ के दौरान।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम
सर। एक तो ये जो अभी आपने आंसर दे रहे थे इसका, जब कंसंट्रेशन बंदा इतनी ज्यादा करता है तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए, तो उसमें जो नंबर ऑफ काउंटिंग्स हैं वो अगर बंदे को याद ना रहे तो उसके लिए वो ये कर सकता है कि नॉर्मल रूटीन में एक दिन बंदा जितने नंबर्स उसने पढ़ने हैं उसको नॉर्मल टाइम देख के भी इतने मिनट में मैं ये पढ़ सकता हूँ, तो उसको टाइम के हिसाब से बंदा कर ले। और नंबर दो ये है कि कुरान पाक में जो हजरत सुलेमान ने इस्लाम के दरबार में वो जो एक तख्त पेश करने का वाकया है, वो जो इल्म है वो डिफ्यूज करना एक चीज को और मौजूदा जगह पे उसको ले आना, ये मौजूदा जमाने में इस पे कोई रिसर्च है और कोई ऐसा काम हो रहा है इसके मुतालिक?
देखिए काउंटिंग का जो किस्सा है, कितने अफसोस की बात है कि जो रब हमें बेहिसाब अता करता है, बगैर गिने अता करता है, हम उसको याद करते वक्त हिसाब रखते हैं। मुझसे आप पूछिए मैंने कितने उम्रे किए, मुझे अजबर है वो बात, मैं भूल ही नहीं सकता क्योंकि जर्फ बहुत कम है। रब का जर्फ यह है कि उसने मुझे बगैर हिसाब के अता फरमाया और मुसलसल देता चला जा रहा है, और मेरी कमजर्फी का यही बहुत बड़ा सबूत है कि मुझे तमाम उम्रें याद है कि मैंने कितने उम्रें की आज तक। तो इसी तरह जब मैं उसको याद करता हूं तस्बीह करते हुए, तस्बीह उसको याद करना है, उसका नाम लेना है, तो मैं तो इतना कमजर्फ हूं कि मैं गिन के नाम लेता हूं उसका, और वो अपनी आला जरफी का सबूत देता है कि बगैर हिसाब के मुझे देता है। तो कहां का गिनना और कहां का याद रखना भाई, उस रब को जो बेहिसाब देता है। तो वो टाइम की तरकीब सही है, बाकी जो तख्त की बात है अभी गालबन लास्ट संडे और संडे बट लास्ट किसी ने इस पे बात की थी तो मैंने इसका जवाब पेश किया था उनकी खिदमत में। बात यह है कि रब ताला जिस तरह अपने इल्म की इल्म-ए-लुदनी की खुशबू खुद फैला देता है, वो छुपता नहीं है, इसी तरह रब की कुदरत किसी से मख्फी नहीं रहती। अगरचे इस नहज पर किसी ने از خود تو کام نہیں کیا کہ ان چیزوں کو دریافت کر لے، لیکن اس کے سامنے، کسی بھی سائنسدان یا کسی محقق کے سامنے جب ایسے واقعات پے در پے آئے ہیں تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کیا ہے. جیسے ہم ایک واقعہ اکثر کوٹ کرتے ہیں مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے اپنے سالار کو جمعے کے خطبے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے اسے ہدایت دے دی تھی. تو شروع میں لوگ اس کو یہی کہتے رہے کہ جس طرح سے گریک مائتھولوجی ہے، ہندو مائتھولوجی ہے، اسی طرح یہ اسلامک مائتھولوجی ہے. لیکن بعد میں سائنس نے اسے دریافت کیا اور ٹیلی پیتھی کا نام دیا. ہمارے یہاں ایسے اولیاء اکرام کے بہت سے قصے ہوتے ہیں جس کو ہم تو کشف کہتے ہیں، کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی اور مقام کی خبر دے دیتے ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. تو جب یہ عیسائی دنیا میں یا ڈیولپ دنیا میں یہ قصے پیش آئے کچھ لوگوں کو، تو سائنسدانوں نے اور دوسرے ریسرچ سکولرز نے اس پر کام کیا، تو انہوں نے اس کو ڈسٹنٹ وینگ کا نام دے دیا. لیکن تسلیم کر لیا سائنس نے کہ یہ ممکن ہے. لائک وائز ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک روحانی مرتبہ ہے ابدال، کہ ابدال ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے جسم کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چونٹی جو برازیل اور لاطینی امریکہ کے دوسرے ملکوں میں پائی گئی، اس پر کام ہوا کہ اس چونٹی کو سائنسدانوں نے ایک کپ میں بند کیا، اس کو کلر وغیرہ لگا کے، نشان لگا کے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری ٹیبل پر پائی گئی. تو یہ جب کپ خالی تھا، اس کا گلاس میں بند کیا شیشے کے، کہ یہ نظر آ جائے ٹرانسفارم ہوتی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہاں سے تو غائب ہو گئی اور کسی اور ٹیبل پہ پائی گئی. تو اس کا انہوں نے نام دے دیا ٹرانسفارمیشن کا. تو یہ سائنس اس کو مان گئی کہ یہ ممکن ہے. تو ہم اس کو ابدال کی صورت میں کہتے تھے. اس میں اعظم پر ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ ہو نہیں سکی. یہ تھیوری سائنس کے ذریعے ابھی پروو نہیں ہو سکی، لیکن امید ہے پروو ہو جائے گی. میں نے یہاں شاید آج سے کچھ مہینے پہلے کسی محفل میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں وہ ایک ایسا ایٹم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ہر ایٹم کا حصہ ہے. وہ تو اس کی اومنی پریزنس ثابت ہو گئی کہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ. تو اب یہ اللہ کی خدائی اور اس کی اومنی پریزنس تو پروو ہونے لگی ہے. اس پر کام تو شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی، کہ جس طرح ہم رب تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، یا مختصر لفظوں میں ہم اومنی پریزنس کی بات کرتے ہیں اللہ کی، تو وہ ذرہ دریافت ہوا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. تو ایٹم تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ توڑا نہیں گیا ان سے. تو اب اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ کسی اتفاق کے نتیجے میں ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ریسرچ سکالرز پر کام شروع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ اسے پروف کروا دیتا ہے اپنی کہی ہوئی باتوں کو. لیکن اس میں اعظم پر ابھی تک ایز سچ کوئی کام ہوا نہیں، ایٹ لیسٹ ناٹ دیٹ آئی نو آف. تو لیکن امید ہے ہو جائے گا.
شاہ جی، میرا سوال ہے کہ اسم کیا ہے، اور کیا ہر ایک اسم کا جسم ہوتا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم الاسماء عنایت فرمایا تھا، اس کی براہ کرم وضاحت فرما دیجیے.
بی بی نور حق کی بات کرتے ہوئے میں نے ابھی ایک عرض کی تھی کہ نور حق کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دو مکتبہ فکر ہیں فقیروں کے یہاں, ایک کہتا ہے لو ہے, دوسرے کہتا ہے لہر ہے. رب کیا ہے؟ نور ہے. تو اس سے متعلق رکھنے والی چیزیں, اس سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں وہ بھی نور ہی کا حصہ ہیں. تو وہ مجسم تو ہیں نہیں. آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کر دوں, اب یہ وقت کم ہے لیکن یہ جواب بڑا لمبا ہو جائے گا کہ ہندوازم میں یہ جو بت پرستی در آئی, یہ در حقیقت اسی کا نتیجہ تھی کہ اس وقت جب ہندوازم دنیا میں انٹروڈیوس ہوا, آج سے 5 سے لے کے 7,000 سال کا عرصہ گزرا ہے, تو ذہنی ارتقاء انسان کی ابھی بہت ابتدائی سٹیجز میں تھی. تو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہونے والے جو نیک لوگ تھے, جن کو ہم اپنے مذہب کے مطابق ولی اللہ کہتے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ انسانی نفسیات میں ایک بات ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھے اس پر ایمان بھی جلدی لاتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتا ہے. تو انہوں نے انسان کی عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے, انسان کو ادھر کو راغب کرنے کے لیے, رب تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ رزاق ہے, وہ غنی ہے, وہ رحیم ہے, غفور ہے, یہ ایٹریبیوٹس جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے مجسم کر دیا اور ان کی شکلیں انہی ایٹریبیوٹس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصور کے مطابق کر دیں. جیسے ان کی لکشمی دیوی, کالی ماتا, اور اسی طرح اور ان کے یہاں بے شمار بت ہیں. تو اللہ کے اسم کو مجسم سمجھنا ہمیں اسی طرف لے جائے گا. یہ سوال کسی نے مجھ سے پہلے بھی کیا, کوئی 15-20 دن پہلے, غالبا کراچی میں یا کہاں پر, وہاں بھی میں نے یہی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ چیز ہمیں کہیں ادھر کو نہ لے جائے. اب ایک طرف تو ہم لوگ آ گئے ہیں کہ ہمیں ہر کام کے لیے ایک وظیفہ چاہیے, اور کچھ بھی کتنا ہی آسان کام ہے اس کے لیے بھی ہمیں وظیفہ چاہیے کہ ہم وظیفہ مل جائے, ہم وہ پڑھیں اور کام ہو جائے ہمارا. تو یہاں تک تو آ گئے. تو اگر یہ اسم کو ہم نے مجسم کر دیا تو پھر تو کچھ اور چیزوں کو راہ مل جائے گی. تو یہ بالکل ان کا جسم نہیں ہے اور نہ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے. یہ اگر کوئی 7 یا 8 اتوار پہلے کی گفتگو اگر آپ سن لیں تو غالباً 2 سنڈیز کی گفتگو صرف اور صرف علم الاسماء کے حوالے سے ہے. اس میں میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے علم کی حد تک میں حت الوسع اس کو ایکسپلین کر دوں. وہ بہت تفصیل سے مل جائے گا کیونکہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے. اس میں کم و بیش اس کے جواب میں 2 گھنٹے مجھے صرف کرنا ہوں گے.